ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। देखते नहीं है क्या? तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भागवत महापुराण छठा स्कंद अध्याय 9, वृत्रासुर का आविर्भाव, श्लोक संख्या 21। श्री देवा उचुहु वायु अंबरा अग्नि अप छितयः त्रिलोका ब्रह्मादयो ब्रह्मादयः जे वयम् उद्विजन्तः हराम यस्मै बलिम् अन्तकः असौ विभेति यस्मात् अरणम् ततः न। श्रीदेवा उवाच श्रीदेवा उचुः वायं वरान्यचित्तपैत्रीयलोका वायं वराम् अग्नि अपचित् त्रिलोका ब्रह्मादयो जे वयम् उद्यन्त हराम यस्मै बलियन्तकोशो विभेति यस्मादरणम् ततो न। श्रीदेवा उचुः वायं वरान् वायं वरम् अग्नि अपथितय त्रिलोका ब्रह्मादयो जे वयमुद्यजन्त हराम यस्मै बलियन्तकोशो विभेति यस्मादरणम् ततो न। श्रीदेवा उचुः वायं वराग्नि अपचितय त्रिलोका वायं वराग्नि अपचितय त्रिलोका ब्रह्मादयो जे वयमुद्यजन्त हराम यस्मै बलियन्तकोशो विभेति यस्मादरणम् ततो न। पढ़िए। विष्णु माता जी श्री देवा उच देवताओं ने कहा वायु वायु अंबरा आकाश अग्नि अग्नि अपा जल क्षितयः तथा पृथ्वी से निर्मित त्रिलोका तीनों लोक ब्रह्मादय श्री ब्रह्मा इत्यादि ये जो वयम हम सब देवतागण उद्विजंतम अत्यंत उद्विग्न हराम प्रदान करते हैं यस्मै जिसको बलिम भेंट अंतकम संहर्ता मृत्यु जय श्री श्री गौरताय राधारस विहारी स्थानोचर मान की जाय असौ वह काल विभेति डरता है यस्मात् जिससे अरणम शरण तथा इसलिए ना हमारा देवताओं ने कहा तीनों लोक की सृष्टि पंच तत्वों क्षिति जल पावक गगन तथा समीर से हुई है जिनको ब्रह्मा आदि विभिन्न देवता अपने वश में रखते हैं हम काल से अत्यंत भयभीत हैं कि वह हमारे अस्तित्व का अंत कर देगा इसलिए वह जैसा चाहता है हम वैसा कार्य करके उसको अपनी भेंट चढ़ाते हैं किंतु काल श्री भगवान से डरता है अतः हम उसी एकमात्र परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारी पूरी तरफ से रक्षा कर सकता है तात्पर्य जब किसी को मारे जाने का भय हो तो उसे श्री भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए ब्रह्मा से लेकर सभी देवता उनकी आराधना करते हैं यद्यपि वे इस भौतिक जगत के विभिन्न तत्वों के स्वामी हैं विभेद यस्मात् शब्द बताते हैं कि सभी असुर चाहे वे कितने महान तथा शक्तिशाली क्यों न हो श्री भगवान से भयभीत रहते हैं देवतागण मृत्यु से डरकर भगवान की शरण में भय में गए और उनसे प्रार्थना की यद्यपि काल सभी के लिए भयकारी है किंतु काल स्वयं भगवान से डरता है क्योंकि वे अभय हैं श्री भगवान की शरण में जाने से वास्तविक निर्भीकता आती है इसलिए सभी देवताओं ने भगवान की शरण में जाने का निश्चय किया ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्जिनमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो जो लोग वीकली आते हैं संडे तो उनके बेनिफिट के लिए मैं पहले का जो कथा है वो बतला दूंगा आप लोग जानते हैं सुन चुके हैं विश्वरूप के संबंध में कि विश्वरूप त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे उनके माता का नाम रचना था रचना असुर कुल की थी और त्वष्टा सुर कुल के थे कोई प्रश्न कर सकता है अरे आजकल हिंदू और मुसलमान साथ में शादी कर लेते हैं ये तो पहले से चलते आ रहा है तो आजकल लव मैरिज होता है पहले लव मैरिज नहीं था ये त्वष्टा ऋषि का लव मैरिज नहीं था बल्कि ये अरेंज मैरिज था कैसे अरेंज किया गया था कि देवताओं में और असुरों में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। तो पहले लड़ाई को खत्म करने का तरीका, भाई शादी करा दो, दोनों संबंधी बन जाएंगे तो लड़ाई नहीं करेंगे। भागवतम के दशम स्कंद में भी ऐसी ही कथा आती है। भोज वंश और जदु वंश में हमेशा लड़ाई होता था, तो भोजवंशियों ने, जदुवंशी बलवान थे, तो भोजवंशियों ने निर्णय किया कि लड़ाई को खत्म करना चाहिए। तो उन्होंने जदुवंश के राजकुमार वसुदेव और भोजवंश की राजकुमारी देवकी से शादी करा दिया ताकि शांति बना रहे। तो पहले शांति बनाने का यह तरीका था। चूहा था वो भी बेचारा किसी वंश का है। तो पहले शांति स्थापित करने का यह तरीका था। तो यह त्वष्टा और रचना का कोई लव मैरिज नहीं था, बल्कि अरेंज मैरिज था ताकि असुरों में और देवताओं में शांति बना रहे। त्वष्टा यही करते थे शांति। तो लाइक फादर लाइक सन, उनके बेटा जो थे विश्वरूप, वो भी इसी काम में लगते थे, वो केवल भजन करते थे, वो केवल भजन करते थे। यहां पर वर्णन किया गया है कि उनके तीन मुख थे। हालांकि जब देवता लोग आए उनको पुरोहित बनाने के लिए, शुरू शुरू में तो चाहते नहीं थे पुरोहित बनना। पुरोहित बनना बड़ा खराब चीज है, बहुत निंदनीय चीज है पुरोहित बनना। ये पंडित लोग पुरोहित बनने चले जाते हैं, गुरु बन जाओ ठीक है, पुरोहित मत बनो। पुरोहित बनना बहुत निंदनीय चीज है। वो पुरोहित नहीं बनना चाहते थे, लेकिन देवताओं ने कहा कि हम तो जानते थे लेकिन भगवान ने कहा इसलिए आपके पास आए हैं, और भगवान का आदेश था तो इसलिए वे पुरोहित बन गए। अब सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले कहते हैं, तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांशी तृण भारत सोमपीथ सुरापीथ अन्नम इदम सुषुषम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा मैंने सुना है कि विश्वरूप के तीन सिर थे। एक सिर से वे सोम रस पान करते थे, एक सिर से सुरा और तीसरे सिर से अन्न खाते थे। आचार्यगण वर्णन करते हैं कि ये तीनों सिर है, ये शांति स्थापने करने का तरीका है। जिस सिर से वो सोम रस पान करते थे वो देवताओं को सोम रस अर्पित करते थे, देवता लोग सोम रस पीते हैं। जिस सिर से वे सुरा रस पान करते थे, सुरा पान करते थे, वो असुरों के लिए था, असुर लोग सुरा पीते हैं। और जिस सिर से अन्न खाते थे वह मनुष्यों का कल्याण रहे, क्योंकि असुर और दैवी प्रकृति मनुष्यों में होती है। मनुष्यों में दोनों प्रकृति हो सकती है, मनुष्य असुर भी बन सकता है और मनुष्य देवता भी बन सकता है। इसलिए अन्न जो है वो मनुष्यों का भोजन है, तो अन्न ग्रहण करते थे। दुख की बात है कि आज हम लोग अन्न बहुत कम ग्रहण करते हैं और चीज ज्यादा ग्रहण करते हैं। अन्न का मतलब होता है खाद्य पदार्थ, इटेबुल, जो खाने योग्य है मनुष्यों के लिए। लेकिन ये बर्गर पिज्जा ये सब खाने योग्य नहीं है, मैं भी खाता हूं लेकिन बैठ के बोल रहा हूं। एनीवे, बर्गर पिज्जा मांस कोको कोला ये सब खाने का पदार्थ नहीं है। हम लोग गाते हैं, सही अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ। यदि अन्न ग्रहण करेंगे तो अन्न ग्रहण करने वाला व्यक्ति सात्विक होता है, अन्न में कुछ मिला देते हैं। आजकल अन्न भी शुद्ध नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग मनुष्य भी नहीं रह चुके हैं, मनुष्य भी नीचे गिर गए हैं। एनीवे, तो विश्वरूप का तीन मुख था, एक मुख से वे सोम रस पान करते थे, पान करके देवताओं को अर्पण करते थे, दूसरे से सुरा रस असुरों को और तीसरे से अन्न, सबको उनका भाग देते थे। अब इंद्र उनको गुरु बना लिए, पुरोहित बना लिए थे, अब जग प्रारंभ हुआ तो सबको समंजस बनाने के लिए, देखिए यज्ञ का मतलब होता है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और सबका धर्म है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। यदि भगवान विष्णु प्रसन्न रहेंगे तो सब लोग प्रसन्न रहेंगे, चाहे देवता हैं, चाहे असुर हैं, चाहे मनुष्य हैं। ये समंजस्य लाना है, शांति स्थापना करनी है तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। कृष्ण यदि प्रसन्न हो जाते हैं सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पेड़ के जड़ में कोई जल डालता है तो पेड़ का कांटा भी प्रसन्न हो जाता है, फल भी प्रसन्न हो जाता है, पत्ता भी, टहनियां, सब कुछ प्रसन्न हो जाता है। ठीक वैसे ही यदि भगवान विष्णु जो सबके आदि हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, जो सबके मूल हैं, उनको यदि हम प्रसन्न कर लें। और विश्वरूप जानते थे, बड़े एक्सपर्ट थे, बड़े दक्ष थे विश्वरूप, वो जानते थे कैसे सबको प्रसन्न किया जाए। इसीलिए वे सबके तरफ से आहुति देते थे, देवताओं के तरफ से उस मुंह से ये सोमरस पान करते थे, असुरों के तरफ से उस मुंह से ये सुरा रस पान करते थे, और मनुष्यों के तरफ से उस मुंह से जिसे अन्न ग्रहण करते थे। इंद्र यह सब देख रहा था, इंद्र को कोई तकलीफ नहीं था कि वो मनुष्यों को दें, क्योंकि मनुष्य जो हैं तो देवताओं के फॉलोअर हैं, देवताओं के लिए जग करते थे, नंद बाबा जग करते थे, इंद्र के प्रसन्नता के लिए जग करते थे, तो देव मनुष्यों से कोई तकलीफ नहीं था। मनुष्य कभी स्वर्ग लोक पर चढ़ाई नहीं किए थे, वो बेचारे संतुष्ट रहते हैं, बस देवता लोग सब कुछ दे दें, मनुष्य लोग खुश रहते हैं। तकलीफ जो है वह है असुरों से। तो इंद्र ने देखा कि अरे पैसा हम खर्चा कर रहे हैं और बेटा दे रहा है उधर असुरों की तरफ, उन लोगों को दे रहा है तो बलवान हो जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि चूंकि विश्वरूप जी की माता असुर कुल से थी तो ननिहाल से बेटों का थोड़ा लगाव होता है, बेटियों का लगाव होता है बाप मां के घर से, बाप के घर से बाप से, और बेटों का लगाव होता है मां से, आज भी अभी तक है, है? कितना भी समाज बदल रहा है लेकिन फिर भी है कि बेटों का लगाव मां से ज्यादा होता है और बेटियों का लगाव बाप से ज्यादा होता है। तो विश्वरूप जी अपने माता पक्ष यानी ननिहाल वालों को यानी असुरों को भी, यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स एवं ही ददौ भागम, ही मतलब निश्चय ही, ददौ भागम परोक्षम असुरान प्रति, परोक्ष रूप से छिप कर करके, ओपेनली नहीं छिप करते थे, यजमानो अवहन भागम अवहत भ्रागम मातृ स्नेह बसानुगा, मातृ स्नेह बसानुगा, माता के स्नेह के चलते वे मामा इत्यादि को यानी असुरों को कुछ दे दिया करते थे। तददेव हेलना तस्य धर्मालिक सुरेश्वर, ये देवता लोग जब उनकी अवहेलना की जाए तो बड़े गुस्सा में आ जाते हैं। हम लोग कथा सुने हैं कि कैसे भगवान कृष्ण एक बार अवहेलना करा दिए इंद्र पूजा का, तो इंद्र कितने कुपित हो गए कि भगवान को गिरिराज बनना पड़ा। गिरिधारी महाराज की जय, गिरिवरधारी बने भगवान। तो देवता लोग बड़े जल्दी ही, एक भक्त कहते हैं क्षणापि तुष्टम क्षणापि रुष्टम, तुरंत खुश भी हो जाते हैं देवता लोग और तुरंत गुस्सा भी करते हैं, ये देवताओं का यह स्वभाव है। तो इस प्रकार से इंद्र देखे कि इस प्रकार से ये छल कर रहे हैं, धर्म अलिकम ये धर्म में के नाम पर धोखा कर रहे हैं, धर्म के नाम पर विश्वरूप धोखा कर रहे थे। और अन्यत्र यही पर देवहेलनम, देव का अवहेलना हो रहा था। पैसा खर्चा देवता लोग कर रहे थे तो स्वाभाविक है कि उनके लिए यज्ञ करें, लेकिन विश्वरूप दूसरे प्लेटफार्म पर थे, वे शांति स्थापित करना चाहते थे। वो जानते थे कि देवता यदि बलवान आज हो जाएंगे तो क्या करेंगे, असुरों पर लड़ाई चढ़ाई करेंगे, और असुर बलवान हो जाएंगे तो देवताओं पर। तो ये झगड़ा मिटाने के लिए बेचारे सब लोगों को शांति रखने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन इंद्र समझ नहीं पाए। और इंद्र ने देखा कि ये धोखाघड़ी जो कर रहे हैं, इंद्र कुपित होकर के आलक्ष तरसा भीत तत्क्षीरम शीर्षाणी अच्छिन्न सा, इस प्रकार से गुस्सा में आकर के तलवार उठाया इंद्र और एक साथ में तीनों सिर को काट दिया। तीनों को एक साथ रखा नहीं, तीनों तीन दिशा में चले गए, तीनों ये सिर। अब इन तीनों सिर से तीन पक्षी उत्पन्न हुई, उन लोगों का भी बड़ा महत्व है इन पक्षियों का। सोमपीथा तो यत्तस्य शीर आसित कपिंजलम कपिंजल कलविंकासुरापीथ अन्नाद्यस्तः। तो कहते हैं जो तीन सिर था उसमें से एक सिर से कपिंजल उत्पन्न हुआ। कपिंजल, क मतलब जो, पी मतलब पीता है, और जल मतलब जल। जो जल को पीता है वो कपिंजल कहलाता है, या दूसरे भाषा में इसे चातक पक्षी कहते हैं, पपीहा कहते हैं। तो कपिंजल का मतलब होता पपीहा या चातक पक्षी। अब भ्रंश भाषा में बिहार में लोग तितिर कहते हैं, तितिर तीन नाम, तितिर उड़ीसा में तितिर कहते हैं, तितिर। और टर टर बड़े, उनका आवाज बड़ा कर्कश होता है। ये पपीहा तितिर कपिंजल देवताओं का भक्तों का घोतक है। बड़े बड़े कवि कालिदास, विद्यापति, ये सब पपीहा का वर्णन किए हैं, उपमा दिए हैं, जहां पर विरह वेदना का उपमा है पपीहा से दिया गया है। कैसे पपीहा, पपीहा का कपिंजल का दो अर्थ है। एक अर्थ यह है कि जो जल पीता हो, और जला का अर्थ स्पिरिचुअल रेज भी बताया गया है, यानी सन रेज भी। तो वर्षा तो हमेशा नहीं होता है, वो भी स्वाति नक्षत्र का पानी हो वो पीता है, फिर साल भर कैसे जीता है, तो सन रेज से जीता है। समुद्र में बहुत पानी है नहीं पिएगा, तालाब में बहुत पानी है नहीं पिएगा, वो पिएगा तो स्वाति नक्षत्र का जल। तो पपीहा का वर्णन जो है वो भक्तों से दिया जाता है। पद्म पुराण में भागवत महात्मा में श्रोता और वक्ता का गुण वर्णन किया गया है। तो जो श्रोता होते हैं उनका गुण वर्णन किया गया है। आठ प्रकार के श्रोता होते हैं, एक प्रवर श्रेणी के होते हैं और एक अवर श्रेणी के होते हैं। प्रवर मतलब श्रेष्ठ, और अवर मतलब नहीं। प्रवरा चातको हंस सुको मीनादय तथा अवरावृ अवरावृ कभु भुरुंड वृषो उष्टादय प्रकीर्तितः, ये चार प्रकार के जो फर्स्ट क्लास के श्रोता होते हैं प्रवरा, उसमें से पहले आते हैं चातक यानी पपीहा। चातक पक्षी का लक्षण है, पपीहा का लक्षण है, तितिर का लक्षण है टिटिहरा, टिटिहरा तितिर नहीं टिटिहरा, इसका लक्षण है कि वे लोग केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीते हैं और कुछ नहीं। तो वैसे ही कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं वो एकांतिक भाव से केवल हरि कथा में रस लेते हैं। बहुत कुछ कहने सुनने के लिए है लेकिन बहुत कुछ सुनते नहीं हैं, वे केवल हरि कथा सुनते हैं, ये चातक। दूसरा है हंस, जो नीर और क्षीर से, क्षीर को ग्रहण कर ले और नीर को त्याग दे, ये हंस का गुण है। तो वैसे ही हंस रूपी जो श्रोतागण हैं वे लोग संसार में रहते हैं, विभिन्न प्रकार का बातें भी सुनते हैं, वो मध्यम अधिकारी के प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, तो वार्ता कभी होती है जैसे प्रभुपाद जी थे वार्ता होती है, वो हंस के रूप, परमहंस हंस के रूप में आता है, तो विभिन्न प्रकार का बात होता है लेकिन उसको नहीं ग्रहण करते हैं। जो सार वस्तु होती है, कृष्ण संबंधित वस्तु है, उसको ग्रहण करते हैं। उसके पास तीसरे हैं सुख, सुख मतलब तोता, और तोतों का गुण है कि जो आप पढ़ाओ वो उसको रिपीट करेंगे, राम 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 जो भी कहो कहेंगे। तो वैसे ही ऐसे भी श्रोतागण हैं जो सुन तो लेते हैं अपने जीवन में उतारते नहीं है तो रिपीट करते रहते हैं। और उसके बाद चौथे जो हैं मीनादय, मतलब और प्रकार के हैं लेकिन संक्षिप्त में इन चार का वर्णन किया गया, मीन यानी मछली। मछली अपलक दृष्टि से अपना भोजन ग्रहण करती है, उन्हें पलक होता ही नहीं है मछलियों में। वैसे ही जो वैष्णव अपलक दृष्टि आंख खोलकर कथा सुनता हो, ना कि आंख बंद करके और सो जाए, वैसा नहीं, जो आंख खोलकर कथा सुनता है, ये चार प्रकार के प्रवर श्रोता हुए। उसके बाद अवर श्रोता या निम्न प्रकार के श्रोता, ब्रिक, ब्रिक मतलब भेड़िया। जब कभी कभी कथा होता है किसी को अच्छा लगता है, हरि बोल राधे राधे बीच में बोलना शुरू करते हैं, ये भेड़ियों का स्वभाव है। कहीं कोई सुमधुर बांसुरी का तान छेड़ा हो और वहां पर हरिण बड़े प्रेम से सुन रहे हो और भेड़िया जाकर के वहां पर जोर से चिल्लाती है, आवाज करती है, तो हरिण भाग जाते हैं। तो वैसे ही भक्त लोग जो कथा सुनने में लगे हुए हैं, बड़े ध्यान से सुनना चाहते हैं लेकिन भेड़िया प्रकृति के लोग होते हैं, राधे राधे वो लौटना भी शुरू करते हैं, ग्राउंड पर रोना भी शुरू करते हैं, मतलब डिस्टर्बेंस करते हैं। दूसरे हैं भुरुंड। भुरुंड नाम की एक पक्षी होती है जो हिमालयों में पाई जाती है। वो भुरुंड क्या करती है, जय श्री श्री गौनिताय राधारास बिहारी सीताराम चंद्र नाम की जय। वो भुरुंड नाम की पक्षी क्या करती है, मिमिक्री करती है, जैसा आप बोलेंगे ठीक वैसे उसी आवाज में वही बात बोल देंगे, ये भुरुण नाम की पक्षी है। वैसे ही ऐसे भी श्रोता लोग हैं, कथा सुनते हैं और जाकर के जो कथावाचक है उसका जो भी कहा है उसी रूप में उसी आवाज में मिमिक्री करते हैं, ते कहलाते हैं भुरुंड प्रकार के श्रोता। उसके बाद तीसरे होते हैं ब्रिस। ब्रिस मतलब बैल। बैल को खल्ली दो जो कि तीखा होता है, चाहे अंगूर जो मीठा होता है, दोनों साथ में मिलाकर दे दो, बैल बड़ा प्रेम से खा लेगा। खल्ली तीखा होता है और अंगूर मीठा होता है, दोनों मिला देते हैं किसान लोग, प्रेम से खा लेता है। तो वैसे ही जो बैल प्रकार के श्रोता होते हैं वो कहीं कथा सुनने पहुंच जाएंगे, देवी भागवत हो रहे वहां भी पहुंच जाएंगे, वो स्कान का हो रहा है वहां भी, जहां कथा हो रहा है शंकराचार्य का हो रहा है जहां भी हो रहा है वहां पहुंच जाएंगे।
आजकल नाम लेना बड़ा गड़बड़ है, नाम नहीं लेना चाहिए। वो पहुंच जाएंगे कहीं पर कथा सुनने के लिए, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं होता है। और उसके बाद चौथे हैं उष्ण, उष्ण मतलब ऊंट। ऊंट के लिए देखिए, एक बगल में आम का पेड़ है और फर्स्ट क्लास का, आजकल आम का दिन है, मीठा मीठा आम लगा हुआ है, और बगल में बबूल का पेड़ है। तो आम नहीं खाएंगे, छुएंगे भी देखेंगे भी नहीं उधर आम तरफ, जानते ना, हमारा ना आम तरफ नहीं देखेंगे, बबूल खाने जाएंगे। तो वैसे ही हरे कृष्ण मंदिर में कथा हो रही है, कथा सुनने नहीं आएंगे, वो पॉलिटिकल रैली हो जाएगी वहां पहुंच जाएंगे, या तो प्रजल्प कहीं हो रहा है, प्रजल्प सुनने चले जाएंगे। तो ये उष्ण यानी ऊंट प्रकार के। तो एनीवे, मैं चातक से कह रहा था कि वैष्णवों को चातक प्रकार का होना चाहिए। भागवतम में दशम स्कंद में सीजन का वर्णन किया गया है, उसमें चातक पक्षी का, ब्रह्मचारियों को चातक पक्षी के समान होना चाहिए। क्या रेज ऑफ भागवतम, क्या बुक है, लाइट ऑफ भागवतम है प्रभुपाद जी की, उसमें है। तो ब्रह्मचारियों को, साधुओं को चातक पक्षी के समान होना चाहिए। तो कपिंजल मतलब चातक, कलविंग क मतलब जो, ल मतलब झगड़ा लगाए, रविंग मतलब आश्री भाव से, जो द्वेष के साथ में दूसरों में झगड़ा करे वो कलविंग कहलाता है, और ये असुर लोग होते हैं। तो यह या गौरैया, गौरैया देखे हैं आप लोग, छोटी छोटी, अब दिखाई आजकल केवल कौवे दिखाई ज्यादा पड़ते हैं, गौरैया तो मर गई, छोटी पक्षी होती है, वो कहीं पर चली जाएगी, कुछ भी खा लेगी। और उसके बाद तितिर, तितिर मतलब जो अलग अलग कर दे वो कहलाता है तितिर। तो मनुष्यों को की उपमा दी गई है तितिर से। मनुष्य वह है जिसमें ब्रेन है समझने के लिए कि सही क्या है और गलत क्या है। दुर्योधन जैसा आदमी भी समझता था, कृष्ण से कहा कि कृष्ण मैं जानता हूं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन दुख की बात है कि मुझे, नहीं दुख की बात नहीं कहा, उसे दुख कहां थी, ताकि मैं जानता हूं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन मुझे धर्म में प्रवृत्ति नहीं हो रही है और अधर्म से निवृत्ति नहीं हो रही है। तो समझ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है। तो तितिर वह है, एक पक्षी है। कितने लोग तितिर देखे हैं, गांव वाले जरूर देखे होंगे तितिर। एक कथा सुखदेव गोस्वामी, एक गांव के लिए ज्यादा था, शहर तो अब बनाया ना, पहले गांव था, भारत गांव का देश था। तितिर एक ऐसी पक्षी होती है जो पेड़ पर घोंसला नहीं लगाती है और न तो आकाश में उड़ती है। तितिर छोटे छोटे झुग्गियों में, क्या बोलते हैं, कुंज में, या पेड़ के नीचे, या कहीं मरुस्थली जैसा हो तो उसमें होल में, झाड़ी और बिल हो उसमें निवास करती है। और उनका जो साउंड है वो अपने नाम को ही बोलते हैं, तितिर 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 बोलती रहती है, अपने नाम को ही गुणगान करती है। तो तितिर मनुष्यों का घोतक है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन करना जानता है। तितिर बितिर कहते हैं, तितिर बितिर हो गए, अलग अलग जो कर दे सही क्या है और गलत क्या है, उसको अलग कर दे। तो इस प्रकार से उन्होंने जब ये सिर काट दिया और ये तीन पक्षी हो गए, तो कपिंजल देवताओं का घोतक है, कलविंग गौरैया असुरों का घोतक है, और तितिर मनुष्यों का घोतक है। इंद्र समझ गए, गुस्सा के बाद ज्ञान उत्पन्न होता, रे मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं क्यों ऐसा कर दिया, रिपेंटेशन होता है। इंद्र समझ गए कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, पाप कर दिया, तो ये पछताने लगे इंद्र। अब इंद्र अपने पाप को बांटे चार भागों में, बराबर बराबर भाग बांटे, एक चौथाई भाग वे पृथ्वी को दिए। भूमि स्तूयम भूमि तूर्यम जग्राह खात पूरवरेण वै इरेणम ब्रह्म हत्याया रूपम भूमौ प्रदिश्यते। मरुस्थली दिखाई पड़ती है, रेगिस्तान, वह इंद्र का पाप है। पृथ्वी ने इंद्र पर दया कर करके उसके पाप का एक चौथाई भाग ग्रहण किया। इंद्र भी जैसे हम लोग को कुछ देता है तो हम थैंक यू बोलते हैं, तो इंद्र भी अप्रिशिएट किए पृथ्वी के सहानुभूति को, और इंद्र उसके बदले में पृथ्वी को यह वरदान दिए कि जहां भी गड्ढा हो वो समय आने पर भर जाएगा। तो यह पृथ्वी को आशीर्वाद दे करके पृथ्वी को एक चौथाई भाग पाप मार दिए। तुरय छेद विरोहेण वरेण जगृहो द्रुमान तेसाम निर्यास रूपेण ब्रह्म हत्या प्रतिष्ठते। दूसरे आए वृक्ष इंद्र का पाप लेने के लिए। तो इंद्र एक चौथाई भाग, दूसरा चौथाई भाग जो पाप था वह वृक्षों को दे दिए, और वह जो पाप है इंद्र का वो दिखाई पड़ता है वृक्ष का जूस के रूप में, लाशा के रूप में, गोंद के रूप में। ये सब इंद्र का पाप है, एक चौथाई पाप। और उसके बदले में उन्होंने दिया आशीर्वाद पेड़ को कि तुम्हें कहीं कोई काट देगा तो पुनः हुआ पनप जाएगा वहां से। आजकल आम का वो पेड़ लगाते हैं, क्या बोलते, कलमा है? कल वो इंद्र के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। उसके बाद सस्वत काम वरेणाहम तूर्यम जगृहो श्रिय रजो रूपेणता ताश्वहो मासी मासी प्रदिश्यते। एक चौथाई भाग इंद्र अपने पाप का स्त्रियों को दिए, जो प्रत्येक महीने स्त्रियों में रजस्वाला होता है मासिक, वह इंद्र का पाप है। पहले जमाने में सभ्यता संस्कृति बहुत ऊंची थी, कोई भी स्त्री रजस्वला में हो उसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। दुर्योधन द्रौपदी का स्पर्श किया था रजस्वला में थे, जिससे उसका आयु नष्ट हो गया, खत्म हो गया। ज्यों द्रौपदी का केस पकड़ा रजस्वला में उस समय उसका, पहले जमाने में किसी कोई स्त्री यदि रजस्वला में है मासिक में है तो उसके लिए अलग रूम था, उसको खाना देता। खैर आजकल एक कहना भी खराब है, आजकल बड़ा मुश्किल है कहना, सत्य बात नहीं बोल सकते हैं आजकल, क्या करेंगे। लेकिन एनीवे इस आसन पर बैठे हैं तो बोलना ही पड़ेगा, बाद में भले बदल जाएंगे लेकिन यहां बोलना पड़ेगा। एनीवे तो ये पाप है इंद्र का, और इंद्र ने आशीर्वाद दिया स्त्रियों को, सस्वत काम वरेण, काम पूरित रहेंगी हमेशा, और बर दिए कि निरंतर उनकी कामेच्छा बनी रहेगी। काम का मतलब मैथुन ही नहीं हुआ, काम का डिफिनेशन है निज इंद्रिय तृप्ति तार नाम काम। इंद्रिय तृप्ति की जो जो वस्तुएं चाहिए वो स्त्रियों के लिए निरंतर ज्यादा चाहिए। देखिए ना, पुरुषों को दो पैंट शर्ट दो धोती कुर्ता में काम चल जाएगा, स्त्रियों को 100 साड़ी चाहिए, गरीब से गरीब स्त्री तो 5-6 साड़ी चाहिए कम से कम। बहुत समय पहले हम पढ़े थे, कोई पॉलिटिकल लीडर, नाम नहीं बोलूंगा, जानता हूं बोलूंगा नहीं, उसके पास 1000 चप्पल थे, आपने सुना था ना, हजार चप्पल था कि एक चप्पल से काम नहीं चल सकता था क्या, हजार चप्पल। आजकल स्त्रियां हीरे ज्वारात का गहना खरीदती है लेकिन पहनेगी एक दिन भी नहीं, लॉकर में लॉकर के रखेगी। शादी विवाह के समय भी वो भाड़ा पर गहना लेकर के आएगी, अपना गहना नहीं निकालेगी, तो क्या फायदा। लेकिन वो इंद्र का वरदान तुम्हारा काम पूर्ति होगा। तो कामेच्छा मतलब केवल मैथुन ही नहीं हुआ, कोई भी चीज हो, खान पान रहन सहन, जब तक शादी नहीं किए हैं छोटे रूम में काम चल जाएगा, अब शादी कर ली तो फ्लैट खरीदना ही पड़ेगा है? जब पहले थे ब्रह्मचारी आश्रम, चलो एक बेड पर काम चल जाएगा, अब तो घर खरीदना पड़ता है। अरे एक और बेड लगा लो, क्या तकलीफ है, दो बेड हो गया, नहीं घर खरीदना पड़ेगा। तो स्त्री मतलब विस्तृत, जिसे बढ़े, जिसे विस्तार हो ये संसार। तो इंद्र ने बड़ा कृपा कर दिया, बढ़ाने का काम कर दिया, ताकि पुरुष लोग मरते रहो, कलेक्ट करो और उनको सेटिस्फाई करो। शश्वत काम वरेण, वर दे दिए कि तुम्हारी काम वासना निरंतर बनी रहेगी, जलती हुई आग के समान रहोगी, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, जलता जाएगा। तो इस प्रकार से स्त्रियों को चौथा भाग दिए, और उसके बाद पांचवा भाग, एक चौथाई भाग जो था चौथा भाग, वो दिए जल को, जल उसे लिए, और जल में जल को वे आशीर्वाद दिए कि कोई वस्तु जल से मिला दी जाए तो उसका भाव बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा। द्रव्य भूयो वरेण तूर्यम जुग्रह मलम, द्रव्य भूय, द्रव्य जो वस्तुओं से मिला दिया जाए उसका भार बढ़ जाएगा। जैसे ग्वाले लोग दूध बेचने जाते हैं ना, तो पानी डाल देते हैं, भार बढ़ जाता है उसका। एक लीटर दूध था, एक लीटर पानी डाल, दो लीटर हो गया। जूस पीते हैं, थोड़ा पानी डाल दिया तो भार बढ़ गया। तो भार बढ़ जाता है जल को डालने से, ये इंद्र का आशीर्वाद था। और जल ने पाप लिया, और वो देखा जाता है जल में बुलबुले के रूप में। मैं इसमें बता रहा था कमेंट में कि बुलबुला, पहले जमाने में कैसे लोग सब संस्कारी थे कि स्नान करते थे, दो काम करते थे स्नान करते समय। एक तो दोनों हाथ से पानी को ऐसे कर लेते थे, और फिर नाक बंद कर करके नहाते थे। आजकल लोग नाक बंद करके नहीं नहाते हैं, और जल को हटाना तो दूर रहा जहां, बल्कि भक्ति विनोद प्रभु आजकल लोग बुलबुला पीते हैं, थम्सअप और सब बुलबुला होते हैं ना, वो बुलबुला पीते हैं लोग, जो कि इंद्र का पाप है। एनीवे, आज तो लोग पाप और पुण्य को भूल चुके हैं, पाप किसे कहते हैं पुण्य किसे। इस प्रकार से एक साल बीत गया विश्वरूप को मरे हुए, उनका सिर काटा गया था। अब उनके पिताजी को पता चला, त्वष्टा को पता चला, प्रजापति हैं त्वष्टा, अपने काम में लगे होंगे और इंद्र इसको सीक्रेट रखे होंगे। जब पता चला, हता पुत्र ततः त्वष्टा, हता मतलब मार दिए गए थे, एक साल पहले मार दिए गए, हता पुत्र ततः त्वष्टा। जब यह बात सुने उसके पश्चात पिताजी ने क्या किया, देखिए इंद्र भी गलती किए और त्वष्टा भी गलती करने जा रहे हैं। विश्वरूप बिल्कुल गलती कुछ नहीं किए थे, मरने के बाद भी उनके सिर से जो तीन पक्षियां प्राप्त हुई वो हमारे लिए शिक्षाप्रद है। उपमा, पहले उपमा दिया जाता था, तो साधु महात्माओं का उपमा दिया जाता था पपीहा से, ब्रह्मचारियों का उपमा तितिर से, मनुष्यों का उपमा तितिर से, और आश्रित प्रवृत्ति वाले लोग थे उनका उपमा गौरयस है। आजकल उपमा भी खत्म हो चुका। तो इधर त्वष्टा जी को बहुत गुस्सा आया, जुहाव इंद्राय शत्रवे, वो एक यज्ञ किए और यज्ञ का लक्ष्य था कि इंद्र शत्रवे, इंद्र को मारने वाला एक शत्रु उत्पन्न हो। लेकिन इंद्र भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के सेवा में लगे रहते हैं, भगवान इंद्र के लिए आते हैं, इंद्रारी व्याकुलम लोके मृड्यन्ति जुगे जुगे। तो भगवान का जो सेवा करता है भगवान उसका रक्षा करते हैं, अवश्य राखीव कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण रक्षा करते हैं। तो कृष्ण के इच्छा को समझ करके सरस्वती जी त्वष्टा के मुंह पर जवान पर चली गई और इंद्र शत्रो विवर्धस्व मा चिरम जहि विद्युषाम। इंद्र शब्द तो एक शब्द है, एक समास है व्याकरण में, संधि और समास दो ऐसे हैं, जब संधि समास ना हो तो वर्ड का मालूम नहीं कर सकते हैं। संधि जो है दो अक्षर का मेल को अलग करना है और समास जो है दो शब्दों को एक साथ लाने की क्रिया को समास कहते हैं। समासना लेकर साथ विचार, यह पीतांबर, पीत अंबर दो शब्द है, उसको एक साथ ला दिया गया, पीतांबर हो गया। जैसे रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नश्च, ये चार अलग अलग है लेकिन समास में उसको एक कर सकते हैं, राम लक्ष्मण, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न एक हो गया। ऐसे राम केशव, राम केशव एक हो गया, इस समास हुआ। तो दो शब्द को एक साथ लाने क्रिया को समास कहते हैं। यहां पर इंद्र शत्रो ये बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास में प्रथम पद जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, लेकिन इसको षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में अच्छा तरह से बताए हैं कि इसको उच्चारण करते समय सरस्वती जी उनके जिह्वा पर आ गई और इंद्र शत्रु को कहने के बजाय कहते हैं इंद्र शत्रु, हे इंद्र, हे शत्रु, तुम बढ़ो, जल्दी बढ़ो और अपने द्वेषी को मारो। तो इंद्र के लिए हो गया। एनीवे इस प्रकार से उस अग्नि में जब आहुति दे रहे थे, इस अग्नि का नाम है अनवाहार्य। अलग अलग अग्नि होती है, जैसे पेट में जगनी होती है वो जठराग्नि कहलाती है। भीमसेन के पेट में एक स्पेशल अग्नि थी, मृकाग्नि थी। तो ये अनवाहार्य विष्णु के प्रसन्नता के लिए जो अग्नि है उसका अलग नाम है, किसी वस्तु के प्रसन्नता के लिए प्राप्त करने के लिए जो जग किया जाता है उसे अनवाहार्य कहा गया है। तो उस अग्नि से वृत्रासुर प्रकट हुए। श्लोक संख्या 13 से लेकर के 17 में वृत्रासुर का गुणगान किया गया। वृत्रासुर कैसे थे, उनका नाम है वृत, वृत मतलब जो घेर ले, वह असुर जो सबको घेर लिया था, प्रत्येक दिन एक बाण के समान बढ़ रहा था, उसके हाथ में त्रिदंड था, त्रिशूल था, उसका शरीर जले हुए के समान था, उसके जो रूंगटे थे वो तप्त तांबे के समान थे, जब मुंह जो था उसमें से दोपहर के सूर्य के समान तेज निकल रहा था, उसका जब जम्हाई लेते थे और मुंह खोलते थे तो एक कंदरा के समान विशाल काय लगता था। इस प्रकार से लगता था कि मानो पूरे आकाश को पी डालेंगे और अपने जिह्वा से तारों को चाट डालेंगे। जब वो पृथ्वी पर उधर चलते थे, अपने त्रिशूल को लेकर के तो पृथ्वी कांपने लगती थी। इससे भयभीत होकर के एनावृत इमे लोका तपसा त्रष्ट मूर्तिना स्वृत इति प्रोक्त पाप परम दारुण। साक्षात पाप के समान वृत्रासुर दिखाई पड़ रहे थे, सबको सभी वस्तुओं को आच्छादित कर लिए थे। अब देवता लोग जब इस प्रकार का वातावरण देखे तो देवता लोग, इंद्र को नारायण कवच प्राप्त हो गया था, इंद्र अपने विमान में आकर के देवताओं के साथ में आक्रमण किया। जितने अस्त्र शस्त्र बाण छोड़ रहे थे वृत्रासुर पर, और वृत्रासुर हाथ से पकड़ करके तोड़ देता था। इनका जितना बाण था सब खत्म हो गया, धनुष टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, भाला गणासा तलवार जो भी प्रहार करते थे तोड़ता था वृत्रासुर। अब इस प्रकार से देवता लोग समझे कि अब तो एक बार मार खाए थे असुरों से, हाथ पैर टूट गया था, तो डर करके भगवान के पास गए थे। तो भगवान जब बृहस्पति से अपराध किए थे, अब यहां पर एक दूसरे, ये भी ब्राह्मण हैं, त्वष्टा के बेटे हैं, वो बृहस्पति ब्राह्मण थे और ये भी ब्राह्मण है। ब्रह्महत्या यहां भी लगेगा, पहले भी लगा था ब्रह्महत्या, और वृत्रासुर के मारने के बाद ही ब्रह्महत्या लगेगा। ये भी ब्राह्मण थे, विश्वरूप को मारे तभी ब्रह्महत्या लगी थी, अभी लगेगा। तो ब्राह्मण थे, जानते थे कि क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा था, तो भगवान नारायण के पास गए। अब नारायण के शरण में आकर के अब यह श्लोक देवता लोग हृदय में, भगवान यहां पर क्षीर सागर पर नहीं गए, वहीं पर खड़ा होकर के भगवान सबके हृदय में समाहित हैं, सबके हृदय में भगवान विराजमान हैं। सब लोग वहां पर खड़ा होकर के भगवान से प्रार्थना करने, इसके देवा उचुहु, देवता लोग प्रार्थना करने लगे। क्या कहते हैं, बायम बरा अग्नि अपाचितया त्रिलोका ब्रह्मा दयो ये वयम उद्यजंत हराम यस्मै बलि अंतकोशौ विभेत यस्मादरणम ततो न। तो न, न मतलब हम लोग, हे भगवान हम देवता आपके शरण में आ गए हैं। वृत्रासुर काल के समान लग रहे थे। भगवान भगवत गीता के 11वें अध्याय में कहते हैं, कालो अस्मि, मैं समय हूं जो सबको खत्म करता हूं। भगवत गीता में पांच वस्तुओं का वर्णन किया गया है, जो इन पांच वस्तुओं को यथावत समझ जाता है वो गीता को समझ जाता है। क्या है पांच वस्तुएं, आप बोले आप सुने, दूसरा कोई सुना नहीं, और कोई पीछे से बोलो जोर से। हां, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये पांच वस्तुएं हैं, उसमें से एक है काल। टाइम, आई एम द डिस्ट्रॉयर एवरीथिंग, वही बात यहां पर देवता लोग कह रहे हैं कि हे प्रभु, यह पूरा विश्व का रचना, यहां पर पांच तत्वों का वर्णन किए हैं। ऐसे इसे समझना चाहिए कि जितने भी महातत्व हैं इन पांच तत्वों में आ गया है। यथा पृथ्वी, उसके बाद जल, उसके बाद वायु, अग्नि और आकाश, ये पांच तत्व हैं। इन पांच तत्वों का जो संबंध है इंद्रियों से है। जो महातत्व है उसमें 24 तत्व जो हैं, उसमें से 10 इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियों का विषय और मन बुद्धि अहंकार, और साथ में ये पांच तत्व। लेकिन इन पांच तत्वों से ही अन्य का अस्तित्व है। जैसे ये देह है, ये देह पांच तत्वों से बना है। यदि ये पांच तत्व न रहे तो मन से लोग भूत बनकर घूमते रहेंगे, इंजॉय कहां करेंगे, देह से इंजॉय कर सकते हैं, मन से नहीं। मेंटल इंजॉयमेंट मेंटल ही रह जाएगा, फिजिकल इंजॉयमेंट को ही कोई यथार्थ समझता है। देखिए कैसी विडंबना है कि रसगुल्ला है, मैं रसगुल्ला अच्छा मुझे लगता है इसलिए उसका नाम लेता हूं, रसगुल्ला के विषय में आप लोग सोचो, खूब ध्यान से सोचो, स्वाद आएगा। जब तक से जिह्वा पर हनुमान जी नहीं बांटेंगे फूड फॉर लाइफ के द्वारा, बांटते हैं कभी कभी, कभी बांट देना, तब तक से स्वाद नहीं आएगा कि रसगुल्ला कैसा है। तो ये पांच तत्व तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि मन न रहे तो रसगुल्ला रहेगा, मन नहीं करता है खाने का तो वो भी काम नहीं चलेगा, तो दोनों जरूरी है। इसीलिए 24 तत्व जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए। इस तत्व को जानने के लिए देवता लोग जानते हैं इस तत्व को, 24 तत्वों को अपने वश में रखे हैं देवता लोग 24 तत्वों को, और कुछ ऋषि लोग इसे अपने वश में रखे हैं, जैसे दुर्वासा जी। दुर्वासा जी जो यज्ञ कर रहे थे जिसमें कुंती उनका रक्षा कर रही थी, सब कुछ प्रोवाइड कर रही थी, वो यज्ञ इसीलिए था कि 24 तत्वों को अपने वश में कर लें। जो 24 तत्वों को वश में कर लेगा कभी मरेगा ही नहीं, नहीं मरना है, अच्छा तरीका है इन तत्वों को अपने वश में कर लो। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये सृष्टि हुई है इन तत्वों से, और इन तत्वों के कंट्रोलर ब्रह्मादयो जे वयम, हम और ब्रह्मा सब लोग कंट्रोलिंग करते हैं, लेकिन आज हम लोगों का दशा बड़ा खराब है। क्या आज हो गया है? आज बड़ा भय उत्पन्न हुआ है। काल जो है वो सबको नष्ट करता है, ब्रह्मा जी को भी जाना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर चिटी पर्यंत तक सबको मरना है, देवताओं को ही मरना है, और काल जो है सबको खत्म करने वाला है। तो मानो देवतागण कहते हैं प्रभु वह काल आ गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो मरने वाला हो, जो मर जो क्या बताए हैं, जब किसी को मारे जाने का भय हो उसे भगवान के शरण में जाना चाहिए। जब काल प्रकट हो जाए और मरना है तो तुरंत भगवान का शरण लेना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होना चाहता है उसमें यह प्रगाढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि मैं मरने वाला हूं, नेक्स्ट मोमेंट आई एम गोइंग टू डाई। जब यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा तब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो सकता है। चाणक्य पंडित मैं नहीं कहता, तो देवता लोग अब डर गए हैं कि मैं मरने वाला हूं, इसलिए कृष्ण कॉन्शियस हुए, भगवान के शरण में गए, तब उनका आनंद निरानंद हो गया, स्वर्ग लोक का जितना भी था सब खत्म हो गया, अब भगवान के शरण में आए हैं। क्योंकि भगवान ही शरणम शरणियम, भगवान ही सबके शरण हैं, उनके शरण में जाए। कमवा दयालु शरणम ब्रजेम, भगवान से दयालु कोई किसी प्रकार से भगवान के शरण में जाए। भगवान शरणागत वत्सल हैं, कारण रहित दयाल हैं, कौन किस लिए आया है मेरे पास भगवान ये नहीं देखते हैं। भगवान देख रहे हैं कि देवता लोग स्वार्थ बस आए हैं, लेकिन भगवान इन लोगों का रक्षा करेंगे, बतलाएंगे तरीका कैसे क्या करना चाहिए। कहते हैं बलि अंत असौ, ऐसा लगता है कि वह बलवान काल आज हम लोगों को अंत कर देगा, हम लोग खत्म हो जाएंगे। विभीति भय में, इतना भयभीत होकर के डरते हुए ये लोग कहते हैं विभीति यस्मात् अरणम ततो नः, हे प्रभु इस भय से हम आपके शरण में आज आए हुए हैं। तो संसार में सब जगह भय है, पदम पदम जत विपदम नति साम, यदि किसी को भय से मुक्त होना है तो उसे जाना चाहिए गतो मुकुंद, भगवान मुकुंद के शरण में जाना चाहिए। तो इस श्लोक का सार इस प्रकार से है कि देवता लोग भयभीत हुए हैं वृत्रासुर के इस व्यवहार से, जब देखे कि सब जगह से आच्छादित हो गए हैं वृत्रासुर, सबको परास्त कर दिए, सब अस्त्र शस्त्र काट डाले, तोड़ डाले, तो भयभीत होकर के भगवान के शरण में आए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो पांचों तत्व तो ब्रह्मा और हम सब लोग उसे कंट्रोलर हैं, लेकिन फिर भी काल हमसे सुपीरियर है, लेकिन काल आपसे सुपीरियर नहीं है, काल आपके बस में है, इसलिए हे काल के प्रभु, काल का दाल वहां नहीं गलता है भगवान के पास, इसलिए आप हमारा रक्षा करें। तो संसार में जिसको किसी प्रकार का रक्षा चाहिए, काल ही है जो सबको डिस्ट्रॉय करता है, काल से इसको वंचित रहना है, उसे चाहिए भगवान के शरण में जाना। और कलयुग में भगवान के शरण में जाने का सरल तरीका है वह महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? हनुमान जी की जय हो।
हरे कृष्णा। तो इंद्र विश्वरूप के हत्या किया, जिसके कारण उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, इंद्र विश्वरूप की हत्या किए जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो ऐसा भी कर सकते, लाइफ टाइम जेल में डाल सकते थे, तो बच सकते थे हत्या करने से।
तो इसके लिए इंद्र से पूछना चाहिए था, आपका सलाह दे देना चाहिए था उस समय। देखिए, जब काम उत्पन्न होता है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, उस समय व्यक्ति जेल में नहीं डाल सकता है। जेल में तो वह डालेगा जो पीसफुल माइंड वाला हो, जो एजिटेटेड माइंड वाला हो थोड़ी जेल में डालेगा। कोर्ट में केस चलता है, जज डिसाइड करता है कि इसको आत्महत्या क्या करना चाहिए, जेल में डालें कि फांसी पर लटकाए। यदि किसी के बेटे का कोई गला काट दिया हो तो बाप क्या करेगा? टिट फॉर टैट, वो भी गला काटेगा है? या गुस्सा आएगा, वो तो गला काटना दूर रहा, कोई इंसल्ट कर देता है तो गुस्सा आ जाता है, लोग गला काटते हैं, इंसल्ट करने तुम्हारा इंसल्ट कर दिया, छूट कर देते हैं। वो जेल में या कहां जाएगा वो तो जज सुनाते हैं, जिसको उससे इंसल्ट नहीं किया हो। तो निर्णय करना, जिसके प्रति अपराध हुआ है, वो जो अपराध किया है और जिसके प्रति हुआ है, वो निर्णय नहीं कर सकता है, निर्णय जो निरपेक्ष हो वो कर सकता है। तो इंद्र उस समय जज के पास नहीं गए, शायद गए होते जज के पास तो जेल में डाल दिए होते जज, लेकिन वो स्वयं ले लिए। और जेल उस समय था भी नहीं, ये संसार जेल स्वयं है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब विश्वरूप का सिर काट दिया गया तो उसमें से तीन पंछी निकले, तितिर चातक और गौरिया। आपने दो के बारे में बताया, गौरिया के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा।
गौरैया छोटी चिड़िया होती है, फुदक फुदक करती रहती, कहीं जाती है डिस्टर्ब करती रहती है।
लेकिन
मैं उपमा आश्रय प्रवृत्ति से, आश्रयों का मैं डिस्टर्ब करना, वो कहीं आ जाएगी, पहुंच जाएगी, आप भगवान के लिए भोग लगा और प्लेट बना पहुंच जाएगी, थोड़ा टेस्ट कर लीजिए पहले आई, वो डिस्टर्ब करना का काम है। आजकल गौरैया दिखाते हैं, छोटी पक्षी होती है, छोटी और बड़ा तेज भागती है, पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तितिर को पकड़ सकते हो, लेकिन गौरैया को पकड़ना मुश्किल होता है। गौरैया देखा नहीं आपने? चलो कभी गांव में आपको दिखाएंगे कभी।
थैंक यू प्रभु।
बम्बई में तो है नहीं, अब लोग देखने जाते हैं, जू में जाते हैं देखने के लिए, देख लेना बैकला जू में तैयार होगी, छोटी पक्षी होती है।
हरे कृष्ण प्रभु।
और कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा, जब भी कोई जीव को मरण के भय है तो किसी जीव को मरण के भय है तो वो भगवान का आश्रय लेना चाहता है, करेक्ट? तो जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल है उनको मतलब पता है कि बॉडी हम नहीं है, हम आत्मा है, तो इसलिए जब भी मरण का भय है तब हम भगवान का शरण लेने का है, तो हमेशा हम भगवान का शरण इसके पहले लेने का है।
हाँ, देखिए, ये सामान्य नियम बताया गया है। सामान्य नियम ये है, मरना तो सबको है, 100% है, कोई ऐसा नहीं जो मरने वाला नहीं है। तो मरने वाले में से कुछ लोग हैं जो रियलाइज करते हैं और कुछ लोग हैं जो रियलाइज नहीं करते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। युधिष्ठिर महाराज यक्ष से कहे, सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग देखते हैं कि लोग मर रहे हैं लेकिन वो नहीं समझता कि मैं भी मरने वाला हूं। तो जो रियलाइज कर लेता है कि मैं मरने वाला हूं, उसे भगवान का शरण लेना चाहिए। क्लियर? लेकिन वो रियलाइजेशन तब आएगी जब साधु संग होगी। साधु संग नहीं होगी तो समझ भी नहीं पाएगा कि मैं मरने वाला, जो कि सत्य है, एज श्योर एज डेथ, सब मरने वाले हैं। लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं मृत्यु के संबंध में। आप कहीं बात कर गए, अरे महाराज कुछ और कुछ बताओ, ये क्या मरने जीने की बात कर रहे हो, तो सीधे ये कहते हैं जो सत्य है उसको सुनना नहीं चाहते हैं। साधु संग से कम सुनते हैं कि मरना है भाई आज नहीं तो कल। महात्मा बुद्ध केवल देख लिए कि आदमी एक मर गया है, क्या लोग मरते भी हैं, बैराग हो गया उनको, बैराग हो गया कल सुन करके। तो एक पार्ट तो है, दूसरा पार्ट क्या था? सेल्फ रियलाइज जैसा जो
नहीं, वही है जो मतलब जब मरण का भय आता है तब भगवान का शरण लेने के बदले इसके पहले शरण लेने का चाहे नहीं।
बिल्कुल, लेकिन पहले शरण कब लेंगे? जब साधुओं की संगति होगी। कुछ कारण होना चाहिए भगवान का शरण लेने का, कुछ न कुछ कारण होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के शरण लेने के लिए सुनना चाहिए, और किससे? प्रमाणिक व्यक्ति से। चार संप्रदाय है, इन चार संप्रदाय में से किसी संप्रदाय में से जहां ज्वाइन करके भगवान का कथा सुनना शुरू करो और वहां से शरण लोगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारतवर्ष में कई एक पॉलिटिकल पार्टी है, हैं? कोई जाता है इलेक्शन लड़ना तो उसको कोई ना कोई जरूर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा, बिना पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करेगा, इंडिपेंडेंट होगा, अकेला रहेगा ना। कोई पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, मान लो 100 इंडिपेंडेंट, तो पार्टी का नाम देना पड़ेगा। तो कोई ना कोई पार्टी होनी चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। वैसे ही यदि हमें भक्ति करनी है तो किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं बोल रहा हूं, ये चार जो संप्रदाय, चार पार्टियां हैं, है? ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, तो इन चारों में से किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, तब भक्ति शुरू होती है, भगवान का शरण। इज क्लियर और नॉट? अगेन आस्क, नॉट क्लियर?
प्रभु, मुझे चार संप्रदाय है लेकिन दूसरा कोई संप्रदाय ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक ही संप्रदाय है जिसमें कृष्ण प्रेम मिलता है, ऐसा मैंने सुना है।
बात सही है, तो यू आर ऑन राइट ट्रैक, कीप इट अप। यस हनुमान, हनुमान जी का कमेंट है।
हरे कृष्ण, तो भेड़िया का मैं एक लक्षण बताना चाहता हूं।
भेड़िया का?
भेड़िया, भेड़िया जो भेड़िया होते हैं, जो भेड़िया को पालते हैं, घास चराते हैं, जब उनको धोना होता है तब एक भेड़िए को उठा के पानी में डालते हैं, तो बाकी भेड़िया बिना सोचे समझे सब पाल में कूद जाते हैं।
बिल्कुल, लेकिन मैं ये भेड़िया नहीं बोला था, ये भेड़िया अलग होता, भेड़ का बात बोल रहे हो। भेड़ अलग है, भेड़िया अलग है, बड़ा खूंखार है, आपको खा डालेगी भेड़िया जो है, खा डालेगी आपको। वो गणेरिया वाली भेड़ नहीं है, वो अलग भेड़ है, लेकिन आपका उदाहरण ठीक रहा, चलो फिलॉसफी ठीक है, बस और कोई प्रश्न? इधर हियर हियर हियर।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जैसे कहा कि विश्वरूप जी एक मुख से सोमरस का पान करते थे और एक मुख से असुरा रस। तो ये इन रसों में क्या अंतर है?
वेल, ये संसार का ये नहीं है पहला नंबर। तो ये हम लोग सुरा समझते हैं वाइन जैसे यहां पर होता है, लेकिन ये वाइन नहीं है, जूस है। सोमरस भी जूस है, सुरा भी जूस है। अंतर इतना ही है कि सोमरस पान करते हैं देवतागण और सुरा पान करते हैं असुरगण। तो यहां पर भी जो सुरा पान करते हैं वो असुर लोग हैं, उसके छोटा ये लोग। सोमरस या उसे बारूणी को भी सोमरस, हनी, एक हनी समझ लो और एक जूस समझ लो, मधु और एक जूस। जो मधु है वो सोमरस हो गया, जूस है वो सुरा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन असुरों का भोजन है सुरा और देवताओं का भोजन है सोम। पीछे अच्छा, जब मैं कथा कहा समझ में आ गया ना, पूरा सीक्वेंस पूरा मैं दिया विश्वरूप का कैसे कैसे, ताकि नेक्स्ट वीक तक आप लोग याद रखना क्या हुआ, कहां तक पहुंचे थे, अब देवता भगवान के शरण में गए यहां तक पहुंचे थे।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण
प्रभु जी। इतना बार बार कुछ न कुछ गलती करने के बाद भी इंद्र जी की पूजा होती है, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है?
ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? हम लोग तो करते हैं, हम उसी संप्रदाय के हैं। पूजा का मतलब होता है आज्ञा पालन करना। प्रभुपाद जी कहते हैं फिर लव मी यानी फॉलो मी। हम लोग ब्रह्मा जी का फॉलो करते हैं। ब्रह्मा जी जो भी बात कहे हैं भागवतम में, ब्रह्मा जी का कितना वर्णन आया हुआ है। हम तो ब्रह्मा जी का पूजा करते हैं,
लेकिन प्रभु जी
वास्तव में पूजा जो है वो केवल कृष्ण की होनी चाहिए और किसी की नहीं। पूजनीय केवल कृष्ण है, सम्मान हम सब कर सकते हैं, लेकिन पूजा केवल कृष्ण का। यदि कृष्ण का पूजा करेंगे सबका पूजा अपने आप हो गया, पेट में भोजन डालो सब अंग अपने आप प्राप्त कर लेंगे। इन जिन लोगों को बुद्धि नहीं है, बुद्धि विकसित नहीं है, वे लोग अलग लोगों को पूजा करते हैं। यहां तक ब्रजवासी गण भी इंद्र का पूजा करते थे। भगवान ने कहा गलत कर रहे हो आप लोग, ये ठीक नहीं कर रहे हो, क्यों करो उसका पूजा? भगवान विरोध किए और भगवान गिरिराज का पूजा कराए, और गिरिराज और कोई नहीं साक्षात ब्रजनंदन श्याम सुंदर हैं, कृष्ण थे गिरिराज के रूप में। तो कृष्ण का पूजा करें, सब पूजा, पूजा केवल कृष्ण की और किसी की नहीं। जैसे कि स्त्री होती है विवाहित हो जाती है तो पत्नी केवल पति की होती है, सम्मान सबका करती है, लेकिन पत्नी कहलाती है केवल पति की। तो ऐसे पूजा जो होता है वो केवल कृष्ण का। यद करोश यदस्नासी यज्ञ होश यदास यद यद तपस्वसी कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव शशि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोस्मि। भगवान का पूजा करने से भगवान का प्रिय हो जाएंगे। तो भगवान का ही पूजा होता है और किसी का नहीं। सम्मान सबका करना चाहिए, हम ब्रह्मा जी को सम्मान करते हैं। ऐसे भी कहावत है, लोग कहते हैं, पता नहीं कहां तक सही है, मैं पढ़ा नहीं हूं, कि उनकी दृष्टि अपने पुत्री पर पड़ गई थी इसलिए लोग, लेकिन भागवत इसका समर्थन नहीं करता है। समाज में लोग कहते हैं कि अपने पुत्री के पीछे दौड़ रहे थे ब्रह्मा जी से कुछ बाद में, इसका वर्णन है शास्त्रों में, इसका वर्णन है, और बाद में पुत्रों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, नहीं समझे तो वे अपना शरीर त्याग करके और फोक के रूप में हो गए और पुनः दूसरा ब्रह्मा हुआ, तब सरस्वती विवाह किए। तो लोग कहते हैं इसलिए पूजा नहीं, लेकिन भागवतम में ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। यदि किसी को और मालूम तो बताइए, हम लोग तो पूजा करते हैं, हम उस संप्रदाय के हैं, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं, तो आचार्य का तो पूजा होना ही चाहिए। आचार्य माम बिजानियाम, भगवान के स्वरूप हैं, एक महाजन है ब्रह्मा जी। पूजा का मतलब है नहीं घंटी रुलाओ और अगरबत्ती, पूजा का मतलब आज्ञा पालन करना, ये असली पूजा है, सम्मान करना, ये असली पूजा है। नहीं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक स्त्री कहती है अपने पति को आई लव यू, आई लव यू, और पति को प्यास लगा है तो एक गिलास दूध लेकर जाती है, आई लव यू, ऐसा कैसा लव हो गया? उसको प्यास लगा है, पानी दो, दूध ले जाने की जरूरत है। तो ब्रह्मा जी जो चाहते हैं वो करें हम, वो इंपॉर्टेंट, ब्रह्मा जी को वो खुश करेगा। और ब्रह्मा जी चाहते हैं कि हम कृष्ण के शरण जाए, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, ईश्वर परमा कृष्णा, ये सब ब्रह्मा जी बताए हैं, हम पालन करते हैं उसका, यही असली पूजा है। यस, लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज आई हैव टू डू सम अदर वर्क, स्पीक लाउडर। वो आपको अकेला में बताऊंगा, सबके सामने कर्म लेना पड़ता है। वाई शुड वन नॉट बिकम पुरोहित? विश्वरूप वॉज नॉट रेडी टू बिकम पुरोहित, ई कंडेम टू बिकम पुरोहित। यू रीड दी प्रीवियस चैप्टर, ई कंडेम टू बी पुरोहित। देखो क्या हुआ, गला काटना पड़ा। आई मीन के गुरु बृहस्पति, गला नहीं काटना पड़ा, चले गए। आई मीन ये समझ लो, वन इज पेड ब्राह्मण, जैसे आजकल जो पूजा करने जाते हैं, और एक हरे कृष्ण डिवोटी। मैं कहता हूं कि जो पेड ब्राह्मण लोग हैं पूजा कराने, कहते हैं ए पंडित जल्दी करो, शॉर्ट कर दो। हाँ हाँ कर रहा हूं। यदि हनुमान कहे जल्दी करो, ए हम तुम्हारा काम नहीं कर चलते, हम ये हुआ गुरु। गुरु मतलब जो उनके बस में नहीं है वो गुरु के बस में है, और पुरोहित मतलब जो उनके पैसा के पीछे है, उनके बस में है जो कहे वही। ऑल राइट, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जाए, शील प्रभुपाद की जाए। एक सेकंड बढ़िए, एक सेकंड भक्ति विनोद प्रभु ब्रिंग हियर सम मैसेज है, कम आई डोंट नो व्हाट इज दैट, समबडी डाइड, समबडी टुक बर्थ, व्हाटएवर। कुड यू आस्क प्रभु टू एक्सप्लेन व्हाट इज आर्ट ऑफ ड्यूरिंग एज नाउ ए डे पीपुल आर टीचिंग आर्ट ऑफ लिविंग, आई एम लिसनिंग his lecture on net, we are teaching art of dying, not art of living. Nobody is going to live, everybody is going to die, so better learn art of dying. And art of dying is janmalabha parapunsa antah narayana smriti, ant mein bhagwan narayan ka smaran ho jaye, yahi hai art of dying. Thank you very much. Hare Krishna.